नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में 32वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, 8 राष्ट्रीय तीव्र गति सड़क गलियारों को केंद्र मंत्रिमंडल की स्वीकृति से देश की आर्थिक वृद्धि में तेजी आएगी। आकलन वर्ष 2024-25 के लिए 31 जुलाई तक रिकॉर्ड 7 करोड़ 28 लाख आयकर रिटर्न दाखिल। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी हासिल की। लक्ष्य सेन ओलंपिक में बैडमिंटन सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। और कोलंबो में भारत तथा श्रीलंका के बीच पहला एक दिवसीय क्रिकेट मैच रोमांचक टाई पर समाप्त। समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में 32वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। वे इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। भारत में इस सम्मेलन का आयोजन 65 वर्ष बाद हो रहा है। एक रिपोर्ट।
6 दिन के सम्मेलन का विषय है संवहनीय कृषि खाद्य प्रणाली की ओर रूपांतरण। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण, बढ़ती उत्पादन लागत जैसी वैश्विक चुनौतियों को देखते हुए संवहनीय कृषि की बढ़ती आवश्यकताओं पर ध्यान देना है। ये सम्मेलन वैश्विक कृषि चुनौतियों के प्रति भारत के सक्रिय दृष्टिकोण को उजागर करेगा और कृषि अनुसंधान नीति में देश की प्रगति दर्शाएगा। सम्मेलन युवा अनुसंधानकर्ताओं और इस क्षेत्र के अग्रणी पेशेवरों को अपने विचार रखने और वैश्विक प्रतिभाओं के साथ जुड़ने का अवसर देगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुकेश कुमार।
आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कृषि विशेषज्ञ डॉ. संत कुमार चौधरी ने बताया कि भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में कृषि की बड़ी भूमिका होगी।
जब 65 वर्षों के बाद कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देश में होने जा रहा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करने जा रहे हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री संघ द्वारा आयोजित, जब हमारे देश की अर्थव्यवस्था तीसरे स्थान को ग्रहण करने जा रहा है, इसमें कृषि की जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देश में बहुत सारे शोधकर्ता हैं, हमारे विश्वविद्यालय में बहुत अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हैं कृषि पर। इन दोनों को एक साथ इकट्ठा करने के लिए इस सम्मेलन में वैश्विक कृषि चुनौतियों के प्रति भारत के सक्रिय दृष्टिकोण को भी प्रकाश डालने का मौका मिलेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय तीव्र गति सड़क कॉरिडोर परियोजनाओं से देश की आर्थिक वृद्धि तेज होगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल 50,000 करोड़ रुपए लागत की 8 परियोजनाओं को मंजूरी दी। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इससे एकजुट भारत की सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है। इन परियोजनाओं से माल ढुलाई क्षमता बढ़ेगी, जाम की समस्या में कमी आएगी और देश के विभिन्न हिस्सों के बीच संपर्क बढ़ेगा। कल शाम नई दिल्ली में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये परियोजनाएं भारत के 2047 के लक्ष्य के अनुरूप हैं।
बहुत बड़ा एक फैसला हुआ है। पूरे देश में 8 बड़े नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स, जो कि एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवेज हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में अप्रूव किए हैं। ये प्रोजेक्ट्स 935 किलोमीटर की टोटल लेंथ के हैं और इसमें 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा।
प्रधानमंत्री ने कल राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों के 2 दिवसीय सम्मेलन को संबोधित किया। श्री मोदी ने राज्यपालों से केंद्र और राज्य के बीच एक प्रभावी सेतु की भूमिका निभाने का आग्रह किया। उन्होंने राज्यपालों को योजनाओं से वंचित लोगों की सहायता के लिए जनता और सामाजिक संगठनों के साथ विचार विमर्श करने का भी आग्रह किया। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश में 3 नए कानूनों के लागू होने से न्याय प्रणाली का एक नया युग शुरू हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 से 10 अगस्त तक 3 देशों फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते की यात्रा पर होंगी। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव जयदीप मजुमदार ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि फिजी और तिमोर लेस्ते के लिए भारत के राष्ट्रपति की पहली यात्रा होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। आकलन वर्ष 2024-25 के लिए 31 जुलाई तक रिकॉर्ड 7 करोड़ 28 लाख आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ये पिछले आकलन वर्ष की तुलना में 7.5% अधिक है। इस वर्ष बड़ी संख्या में आयकर रिटर्न भरने वालों ने नई कर व्यवस्था को चुना है। 5.27 करोड़ रिटर्न नई कर व्यवस्था में और 2.01 करोड़ पुरानी कर व्यवस्था में भरे गए। इस वर्ष 31 जुलाई को एक ही दिन में 69,92,000 से अधिक रिटर्न भरे गए। इस वर्ष 31 जुलाई तक 58,57,000 लोगों ने पहली बार रिटर्न दाखिल किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग विधानसभा चुनाव तैयारियों की समीक्षा के लिए बृहस्पतिवार से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के दौरे पर होगा। 3 दिन के दौरे में आयोग श्रीनगर में सभी राजनीतिक दलों से मुलाकात करेगा। जम्मू कश्मीर में हाल के लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतदान के बाद आयुक्त ने कहा था कि लोगों की सक्रिय भागीदारी एक सकारात्मक संकेत है। स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने एक उच्च स्तरीय बैठक में 9 सर्वाधिक प्रभावित राज्यों में डेंगू की रोकथाम और प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा की। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि देश में डेंगू से मृत्यु दर वर्ष 1996 में 3.3% से घटकर 2023 में 0.17% हो गई है। केरल में भूस्खलन प्रभावित वायनाड जिले में खोज अभियान आज फिर से शुरू होगा। प्रभावित क्षेत्र को 6 क्षेत्रों में बांटकर सशस्त्र बलों, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और अन्य एजेंसियों के 40 दलों को इस अभियान के लिए तैनात किया गया है। कल मलबे से 14 शव बरामद किए गए। उत्तराखंड में बचाव कार्य के दूसरे दिन कल केदारनाथ धाम और यात्रा मार्ग पर फंसे 6,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाला गया। उधर हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 दिन के दौरान अत्यधिक वर्षा और बादल फटने की घटनाओं के कारण लापता हुए लोगों की तलाश के लिए राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, कोंकण और गोवा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 4 दिन के दौरान राजस्थान, उत्तराखंड, पश्चिम राजस्थान, पश्चिम बंगाल के उप हिमालय क्षेत्र, बिहार और उत्तर पूर्व क्षेत्रों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी हासिल कर ली है। डेमोक्रेटिक राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष जेमी हैरिसन ने कल ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि सुश्री हैरिस ने राष्ट्रपति पद के लिए पार्टी का नामांकन प्राप्त करने के वास्ते डेमोक्रेटिक प्रतिनिधियों से पर्याप्त मत प्राप्त किए हैं। कमला हैरिस को लगभग 4,000 प्रतिनिधियों में से 2,350 प्रतिनिधियों के मत प्राप्त हुए। सुश्री हैरिस ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति पद का डेमोक्रेटिक उम्मीदवार होने पर उन्हें गर्व महसूस हो रहा है। इसराइल के तेल अवीव में भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों को सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह जारी की है। इसराइल द्वारा शीर्ष हिजबुल्ला कमांडर फुआद शुक्र को मारने के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। भारतीय दूतावास स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है और इसराइल के साथ नियमित संपर्क में बना हुआ है। भारतीय नागरिक दूतावास से 24/7 हेल्पलाइन नंबर 972-54-75-20711 और 972-54-32-78-392 पर संपर्क कर सकते हैं। तुर्की ने कल देश में सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर रोक लगा दी। तुर्की सरकार ने इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा पर हमास प्रमुख इस्माइलिया हानिया की हत्या पर शोक की पोस्ट रोकने का आरोप लगाया है। तुर्की राष्ट्रपति के संचार निदेशक फाहाटिन अल्टुन ने इंस्टाग्राम की आलोचना की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्सपर्ट श्री अल्टुन ने कहा कि तुर्की सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना जारी रखेगी। पेरिस ओलंपिक में लक्ष्य सेन ने पुरुष सिंगल्स बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। एक रिपोर्ट।
शुक्रवार का दिन भारत के लिए कुछ अच्छे परिणाम लेकर आया। बैडमिंटन की पुरुष एकल स्पर्धा में लक्ष्य सेन ने चाइनीज ताइपेई के टियान चेनचाओ को 19-21, 21-15, 21-12 से एक रोमांचक मैच में हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। आकाशवाणी से बात करते हुए लक्ष्य सेन,
यही कहना चाहूंगा कि सेकंड एंड थर्ड गेम में जैसा मैं खेला मैं खुश हूं उससे, एंड यस मैं आगे आने वाले मैचेस में भी अपना मोमेंटम कैरी करना चाहता हूं।
लक्ष्य सेन का सेमीफाइनल मुकाबला 4 अगस्त को टोक्यो ओलंपिक खेलों के स्वर्ण पदक विजेता और दूसरी वरीयता प्राप्त डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसन से होगा। पुरुष हॉकी में कल भारत ने म्यूनिक ओलंपिक खेलों के बाद पहली बार ऑस्ट्रेलिया को ओलंपिक खेलों में हराया। स्कोर रहा 3-2। भारत के लिए पहला गोल करने वाले अभिषेक,
पहला गोल तो टीम को लीड दिया उसने, तो मेरा भी इसमें कॉन्फिडेंस आया हुआ और टीम का भी कॉन्फिडेंस आया हुआ।
4 अगस्त को क्वार्टर फाइनल में भारत का मुकाबला होगा ग्रेट ब्रिटेन से। 25 मीटर पिस्टल शूटिंग के महिला वर्ग में ईशा सिंह 18वें स्थान पर रहकर पदक की दौड़ से बाहर हो गयी। वहीं 590 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर रहकर मनु भाकर आज पेरिस ओलंपिक खेलों में अपने तीसरे पदक पर निशाना लगाएंगी। आज आर्चरी में भजन कौर के सामने होंगी इंडोनेशिया की दयानंदा चोरुनीसिया और दीपिका कुमारी के सामने होंगी जर्मनी की मिशेल क्रोपेन। ये दोनों महिला वर्ग का एलिमिनेशन राउंड का अगला मुकाबला खेलेंगी। सेलिंग में नेत्रा कुमानन और विष्णु सर्वनन डिंगी में आज अपनी 5वीं और 6ठी रेस लगाएंगे। मुक्केबाजी के 71 किलो के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज निशांत देव का मुकाबला होगा मेक्सिको के मार्को अलोंसो वर्डे अल्वारेस से। महिलाओं की स्कीट निशानेबाजी में रईजा ढिलो और माहेश्वरी चौहान आज चैट्रू शूटिंग रेंज में अपने निशाने लगाएंगी। पेरिस से मैं महेंद्र सिंह लालस।
भारत और श्रीलंका के बीच पहला एक दिवसीय क्रिकेट मैच कल रात कोलंबो में रोमांचक टाई में समाप्त हुआ। 231 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 47 ओवर और 5 गेंदों में सभी विकेट खोकर श्रीलंका के स्कोर की बराबरी की। कप्तान रोहित शर्मा ने 47 गेंदों में 58 रन बनाए। अक्षर पटेल ने 57 गेंदों में 33 और केएल राहुल ने 43 गेंदों में 31 रन जोड़े। श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा और चरित असलंका ने 3-3 विकेट लिए। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट पर 230 रन बनाए। केंद्र ने देश के 6 राज्यों में पश्चिमी घाट के 56,800 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने के लिए मसौदा अधिसूचना जारी किया है। इन राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु शामिल हैं। आकाशवाणी संगीत समारोह आज नई दिल्ली में आकाशवाणी परिसर में शुरू हो रहा है। 2 दिन के समारोह का आयोजन आकाशवाणी के रंग भवन में शाम 5:30 बजे से होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonyaya.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
धन्यवाद कनक। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे की सीबीआई जांच, नवभारत टाइम्स, राष्ट्रीय सहारा, हिंदुस्तान और दैनिक भास्कर सहित अनेक अखबारों की सुर्खी बनी है। नवभारत टाइम्स लिखता है हाईकोर्ट ने पुलिस को लगाई फटकार। दैनिक भास्कर लिखता है एमसीडी और पुलिस को फटकार, कोर्ट ने कहा शुक्र है आपने पानी का चालान नहीं काटा। नीट पेपर लीक मामले में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आज के अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने न्यायालय के हवाले से लिखा है पेपर लीक का दायरा सीमित था, नीट में धांधली नहीं, एनटीए में सुधार करें। देशबंधु ने इस मामले में न्यायालय का निर्देश दिया है नीट यूजी परीक्षा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया बनाए सरकार। पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर के 25 मीटर महिला पिस्टल के फाइनल में पहुंचे की खबर अखबारों की सुर्खी बनी है। दैनिक भास्कर लिखता है आज मेडल की हैट्रिक की आस। भारतीय हॉकी टीम की ओलंपिक में 52 साल बाद ऑस्ट्रेलिया पर जीत, अखबारों ने पहले पन्ने पर सचित्र दी है। दैनिक ट्रिब्यून की टिप्पणी है हॉकी में छाए साडे मुंडे। हरिभूमि ने जश्न शीर्षक से लिखा है 15 अगस्त को लाल किले पर 105mm की लाइट फील्ड गन से दी जाएगी 21 तोपों की सलामी। अमर उजाला पहले पन्ने के बॉटम स्प्रेड पर लिखता है हमारा शुभांशु जाएगा अंतरिक्ष में, 40 साल बाद दूसरे भारतीय, वायुसेना के ग्रुप कैप्टन को अंतरिक्ष स्टेशन में ले जाएगी अमेरिकी एजेंसी नासा।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में 32वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा 8 राष्ट्रीय तीव्र गति सड़क गलियारों को केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति से देश की आर्थिक वृद्धि में तेजी आएगी। आकलन वर्ष 2024-25 के लिए 31 जुलाई तक रिकॉर्ड 7,28,00,000 आयकर रिटर्न दाखिल। अमरीका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी हासिल की। लक्ष्य सेन ओलंपिक में बैडमिंटन सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने और कोलंबो में भारत तथा श्रीलंका के बीच पहला एक दिवसीय क्रिकेट मैच रोमांचक टाई पर समाप्त। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।